अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, पर हमारे साथ बहुत सारी मुश्किलें हैं। और हमने पिछले दिनों बहुत प्रकार से अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों पर विचार किया है, और उन मुश्किलों को यदि हम आसान बना लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनने में फिर समय नहीं लगेगा। हमें कुछ बातें जो हमारे जीवन के बारे में सच हैं उन पर विचार करना चाहिए। जीवन की सच्चाई से हम यदि रूबरू नहीं होते हैं, जीवन की सच्चाई को यदि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब फिर हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोई प्रक्रिया भी अगर करेंगे तो वो बहुत कतई होगी। इससे हमारे अपने आंतरिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, और हुआ हम सबके साथ यही है। हम जीवन की सच्चाई को बिना समझे अपने जीवन को जीना तो शुरू कर देते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति कार ड्राइव करता है और सारी जिंदगी कार ड्राइव करता रहता है, पर उसे ये नहीं मालूम होता कि कार का फंक्शन क्या है, वो कैसे फंक्शन करती है, और कहीं किसी उसमें फंक्शन में गड़बड़ी आ जाए तो मुझे उसे कैसे दुरुस्त करना चाहिए, कैसे उसे ठीक करना चाहिए। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही है, जीवन हमें मिला है, लेकिन हम अपने ही जीवन के बारे में बहुत अनभिज्ञ हैं। जो थोड़ी की बातें जानते भी हैं ये कितनी सच हैं इसका भी हम एनालिसिस नहीं करते हैं। हमने तो जैसा और लोग जीवन जीते आए हैं वैसा ही अपने जीवन को जीना शुरू किया, और कभी ये भी नहीं सोचा कि क्या इससे भी बेहतर जीवन जिया जा सकता है जैसा जीवन मैं जी रहा हूं। और अगर कभी हमने अपना जीवन बेहतर जीने का प्रयास भी किया तो सिर्फ दूसरे से बेहतर। जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है उसका तो हमारे अंदर कोई विचार ही नहीं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि कोई जिस तरह जी रहा है हम उससे और बेहतर कैसे जिए। कोई अगर बहुत अच्छे मकान में रह करके जीवन जी रहा है तो मैं उससे भी अच्छे मकान में जीऊंगा तो शायद मेरा जीना बेहतर कहलाएगा। ऐसी बहुत सी बातें जिनको कि हम बेहतर मानते हैं और उन चीज़ों के प्राप्त होने पर ही हम ये मान लेते हैं कि हाँ सचमुच मेरा जीवन अब पहले से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन की सच्चाई कुछ और है। जीवन की पहली सच्चाई है कि जीवन में दुख है, लेकिन इस सच्चाई को हम सहसा स्वीकार नहीं कर पाते। अंतरंग में हमें ये लगता है कि भले ही बाहर कितने ही दुख हों, लेकिन इस संसार में कहीं ना कहीं कोई सुख है, मैं उसे पालूं। और फिर मैं उस एक भ्रम में कि इस संसार में सुख है और दुखों को झेलता रहता हूं, कभी उन दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं करता। कभी यदि उपाय करता भी हूं तो बहुत क्षणिक उपाय करता हूं, बस थोड़ी देर के लिए मुझे इस दुख से निजात मिल जाए और मेरा काम हो गया। इस दुख का कारण क्या है ये भी नहीं जानना चाहता मैं तो उन क्षणों में मुझे जैसे भूख लगती है तो इस भूख के दुख से बचने के लिए मुझे भोजन कर लेना चाहिए बस, लेकिन अब मुझे कभी भूख ही ना लगे इस बात का इंतजाम मैं कभी नहीं करता। मैं तो सिर्फ जब जब मुझे किसी चीज से दुख मिलता है बस उसका कोई थोड़ा सा छोटा सा उपाय उसी क्षण ढूंढ करके और आगे बढ़ जाता हूं। दुख के प्रतिकार को ही मैंने सुख मान लिया है, और जब जब मेरे दुख का थोड़ी देर के लिए प्रतिकार हो जाता है मुझे लगता है कि जैसे मुझे सुख मिल गया। ये जो दुख की अस्वीकृति है वो हमारे अपने जीवन को अच्छा नहीं बनने देती। काश एक बार हम पूरे मन से हृदय से ये स्वीकार कर लें कि यहां संसार में मुझे बहुत दुख है, ये संसार अत्यंत दुखमय है। दुख का कारण क्या है ये बात की बात है, लेकिन दुख को स्वीकार करना, और ऐसा ही नहीं है, हमें तो दुख में भी सुख मालूम पड़ने लगता है जब हम लगातार किसी दुख को भोगते रहते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि एक जेल में पुराना कैदी जिस कमरे में रुका था वहीं पर नए वाले कैदी को भी भेजा गया, और जब वो नया कैदी भीतर की तरफ अपना सामान रखने लगा तो पुराने कैदी ने जरा उसको रुआब बताया कि वाह अब भी आए हो और एकदम भीतर रख रहे हो सामान, रख लो वहां पर, कितने दिन के लिए आए हो? बोले साल भर के लिए। देखो अब भी आए हो और साल भर के लिए आए हो और भीतर घुस रहे, इधर हम 15 साल से पड़े हुए हैं। ऐसा जैसे कि हम अपने घर में न रह रहे हो ऐसा फील कर रहा है वो, है तो 15 साल से जेल में, लेकिन उसमें भी वो ये कहता है कि मैं सीनियर हूं, यहां दुख भोग रहे हैं हम अनादि काल से, लेकिन हम ये मान करके कि नहीं हम कहां दुख भोग रहे हैं, हमने तो संसार के बहुत से सुख पाए हैं और हम उन सुखों को पाने में बहुत सीनियर हैं, हम बहुत अनुभवी हैं। थोड़ा सा विचार करें अपन कि कहीं ऐसा ही हमारा जीवन सच्चाई से विमुख होकर हम जी रहे हैं क्या? काश हम एक बार पूरे मन से, जैसे कि हम अपने जीवन में कोई दुख आता है और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारे मन में उस दुख से बचने का कोई ना कोई बहुत उपाय खोजने का मन होता है कि नहीं? लेकिन जब हम दुख को स्वीकार ही कर ले, दुख को स्वीकार ही नहीं करें, जैसे हम अपनी डिजीज को स्वीकार ही नहीं करें तो फिर डॉक्टर के पास जाने की और मेडिसिन लेने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होगी। जब हम दुख स्वीकार करते हैं तब हम उसका कारण ढूंढते हैं और उससे बचने का उपाय करते हैं। इसलिए पहली चीज है कि मैं इस संसार में मुझे दुख मिलता है, मैं इसको स्वीकार कर लूं, पूरे मन से स्वीकार कर लूं, अंतर से स्वीकार कर लूं। मुझे इसमें जो सुख की एक थोड़ी सी आशा है वो भी आशा मेरी टूट जाए,
ठीक ऐसे ही जैसे कि मैंने कई कई बार रेत से तेल पेल करके निकालना चाहा और मैंने कई की बार पानी को मत करके मक्खन निकालना चाहा और हर बार मैं असफल रहा, तो एक बार मैं पूरी तरह से ये क्यों नहीं सोच लेता हूँ कि रेत में से कभी तेल नहीं निकलेगा और पानी को मतने से कभी मक्खन नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से मुझे इस संसार में इन भौतिक चीज़ों में कभी सुख मिल नहीं सकता, यहाँ दुख अनिवार्य है। अगर ये हमारे भीतर एक बहुत गहराई में, अभी तो ये उधार है अपने पास, ये जो थॉट है, ये जो विचार, वो बहुत उधार है। ऐसा तो अपन से कोई पूछेगा तो अपन 12 बजे रात को भी कह देंगे हाँ भैया संसार में बहुत दुख है, लेकिन सुबह से फिर उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे कि शायद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो ये तो अपन बहुत दिन से कर रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी तो अपने जीवन में बहुत समय से है। जिस चीज़ की अपन निंदा करते हैं उसी में इंडल्स रहते हैं, जिस संसार की निंदा करेंगे कि इसमें क्या मिला मुझे और दुख ही दुख मिला, उसी में रचे पचे भी रहेंगे। लेकिन ये आदत बदलनी पड़ेगी, पूरी तरह से एक बार निराश हो जाना पड़ेगा कि इस संसार में मैंने जहाँ जहाँ भी सुख पाने की कोशिश की मुझे दुख मिला, और मैंने अपने अनुभव से ये सीख लिया है कि यहाँ इस संसार में दुख है, मैं इसे स्वीकार कर लूँ। और इतने ही नहीं, मैं अपने दुखों का इंतजाम खुद करता हूँ। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है, खोजते तो हम बाहर ही हैं, क्योंकि दुख है तो उसका कारण भी होगा। अगर सिर में दर्द है तो सिर में दर्द का कोई कारण होगा। अब वो कारण सबका अलग अलग हो सकता है। अगर कोई सांसारिक दुख मिलता है हमें तो उसका तो कोई कारण अलग अलग हो सकता, लेकिन जो अनादिकाल से सभी जीवों को, भले ही संदर्भ अलग अलग हो दुख का, लेकिन वो जो दुख मिल रहा है उसका तो कोई कारण है, और उस दुख का कारण मेरे अपने भीतर है। मैं खोजता हूँ बाहर कैसे, कि वो कल जो है जरा गर्मी ज़्यादा थी और कल जरा मेरा भोजन ठीक से नहीं हुआ था, इसलिए शायद मुझे आज सिर में दर्द हो रहा है, या कि कल और भी मुझे बहुत लोड था मेरे ऊपर काम का, मैं बहुत थक गया था, शायद इसलिए ऐसा हो सकता है, या कि लोगों ने मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं किया इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया, इसलिए शायद सिर में दर्द है। दुनिया भर के बाहर के कारण पर हम विचार करेंगे, लेकिन मेरे कहीं भीतर असाता का उदय है ऐसा कभी विचार ही नहीं आता। मेरे ही किसी कमी की वजह से ये मेरे जीवन में दुख आया है ये कभी नहीं आता। सर्कमस्टेंसेस मेरे फेवर में नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। जिस दिन संसार में मेरे अनुकूल सारी स्थितियाँ हो जाएंगी उस दिन मैं सुखी हो जाऊँगा, ये एक दूसरा भ्रम। संसार में सुख है ये एक भ्रम है, और दूसरा भ्रम ये है कि मेरे दुख का कारण मेरे भीतर नहीं कहीं बाहर, और फिर मैं बाहर उनका उपाय करने की कोशिश करता हूँ, और जितना जितना दुख से बचने का बाहरी उपाय करता हूँ वे सारे उपाय भी अंततः मुझे दुख में ही डाल देते हैं। मैं कारण तो मेरे भीतर छुपाए रखे हूँ अपने दुख का, उसे वहाँ से ठीक नहीं करता हूँ। जो रिसोर्स है उस रिसोर्स पर मैं चोट न करके, और उसकी जो बाहर मैनिफेस्टेशन है उसका जो बाहर फैलाव है उसको मैं दुरुस्त करने की कोशिश करके और उस दुख से बचने का उपाय करता हूँ। ये मेरा अपना भ्रम है, मुझे दुख का कारण अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन है। जरा सा अपने एनालाइज करके देखें, जब जब भी अपने जीवन में दुख आता है क्या क्या मन करता है, इनने ऐसा कर दिया उनने वैसा कर दिया। हमारी ज़िंदगी में कुछ सब ऐसा ही होता है, कोई हमारे फेवर में नहीं है, ऐसा आता है कि नहीं आता? सब जैसे कि मेरे दुख का इंतजाम कर रहे हो, सब सारी दुनिया मेरे दुख के इंतजाम करने में लगी है, कई बार तो ऐसा लगने लगता है। और दुनिया नहीं तो कम से कम जिस समाज को बिलोंग करता हूँ वो सब मेरे दुख का कारण है, समाज नहीं तो चलो जिस परिवार में मैं हूँ मेरे परिवार में मेरे परिवार के लोग मेरा कभी फेवर ही नहीं करते हैं, सब मुझे दुखी पहुँचाते हैं, मैंने सबके लिए कितना तो करा, यही ना, यही तो सारा सोच है अपना। लेकिन दुख में अपने किसी कर्म की वजह से पा रहा हूँ ना, ये नहीं, वो तो उन लोगों की वजह से पा रहा हूँ, सब दुनिया भर के लोगों की वजह से दुख पा रहा नहीं। जिस दिन ये भीतर से आ जावे, बाहर बाहर नहीं भीतर से, कि दुख का इंतजाम मैंने अपने लिए खुद किया है, कोई और ना मुझे दुखी कर सकता है ना कोई और मुझे सुख दे सकता है, मैं अपने सुख दुख की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लिए हुए हूँ। एक बाबा जी थे, तो वो रास्ते से गली से गुजरते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे खेल रहे थे तो बाबा जी के ऊपर कहीं से ऊपर से उड़कर एक लाल रंग की वो चिलकनी जैसे नहीं कागज होते हैं चमकदार कागज बच्चे लोग जो है फेंकते हैं उनको उड़ाते हैं, तो वो कहीं से आके उनके ऊपर लाल रंग का गिर गया। बच्चे उनको देख करके हंसने लगे और कहने लगे बाबा लाल चिड़ी लाल चिड़ी। अब बाबा को जैसे ही लाल चिड़ी कहें तो बाबा को भी गुस्सा आए और मारने दौड़ते हुए, तो बच्चों को भी मजा आती थी, जैसे ही बाबा जी मारने दौड़ते तो बच्चे कहीं छुप करके और फिर वहां से मुंह निकाल के कहते लाल चिड़ी। अब वो उनकी चिड़ बन गई। अब जैसे ही बाबा जी गली में एंटर होते और बच्चे अपने घरों से झांकते और झांक करके और धीरे से कहते कि लाल चिड़ी, तो बच्चे और बाबा जी को बहुत गुस्सा आती। बाबा जी यहां से वहां लाठी लिए और भागते, बच्चों को हड़काते कि भागो तुम लोग मुझे चिढ़ाते हो, ऐसा नाराज होते। और आधे घंटे ये खेल चलता रहता, बाबा जी गली के इस छोर से उस छोर पर बच्चों के पीछे लाठी लेके भागते, बच्चे हंसते और उनको चिढ़ाते कि लाल चिड़ी। अब क्या हुआ, एक दिन उन बच्चों के पिता ने देखा, कह रहे ये तो ठीक नहीं है, इतने बुजुर्गवार हैं और इनको ये बच्चे इस तरह से तंग करते हैं। बच्चों को बुलाया, देखो वो तुमसे कितने बड़े हैं और तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए और तुम उनको चिढ़ाते हो जिससे उनको कितनी परेशानी होती होगी। बच्चों ने कहा हमें तो नहीं लगती कि उनको परेशानी होती, वो तो खुद भी मजा लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुमको लगता है तुम लोगों को। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो हम नहीं चढ़ाएंगे, पर आप देख लेना खुद, वो खुद ही चाहते हैं ऐसा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो लगता है कि बाबा जी बहुत परेशान हो जाते होंगे, ये बच्चे उनको तंग करते हैं चिढ़ाते हैं। अब दूसरे दिन बाबा जी गली में आए, बच्चे सब शांत, कोई नहीं बोला कुछ भी नहीं। अब बाबा जी और धीरे धीरे जा रहे हैं कि शायद कोई कहे, हाँ अब आजू बाजू देख रहे हैं कहाँ गए सब, गली के उस छोर तक पहुंच गए कोई नहीं मिला, बड़े उदास। फिर एक चक्कर काटा गली का और फिर से जब वापस लौटने लगे तो वही जनाब जिन्होंने बच्चों को समझाया था आकर सामने खड़े हो गए। बाबा जी के हाथ जोड़ के कहा कि बाबा जी आज तो ठीक है ना, आज तो आपको बच्चों ने तंग नहीं किया होगा, हमने सबको समझा दिया। अब बाबा जी का गुस्सा देखने लायक, अच्छा तो आप ही हैं जो हमारे बीच में बाधक बन रहे हैं, आपको हमारे और बच्चों के बीच बाधक बनने की क्या आवश्यकता थी, वे चिढ़ाते थे तो आपको क्या तकलीफ है, अब बताओ। बाबा जी कह रहे हैं कि अगर बच्चे हमें चिढ़ाते और हम चिढ़ते हैं तो आप क्यों बीच में बाधक बन रहे हैं, हमें उसी में मजा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी ऐसे ही संसार के दुखों में मजा आ रहा हो और हम चाहते हो कि और आवे, नहीं तो समय कैसे कटेगा। ये अपने भीतर झांक करके देखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे तो लगेगा कि नहीं ऐसा कौन करता है, लेकिन अपने दुख का इंतजाम अपने हाथ से हम खुद करते हैं। कौन नहीं जानता है कि क्या चीज करने से और हमारे जीवन में सुख आएगा और क्या चीज करने से हमारे जीवन में दुख आएगा, कौन नहीं जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी कितने लोग उससे बच पाते हैं। हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि कहीं हम जहां दुख का कारण बाहर ढूंढ रहे हैं, अब हमें थोड़ा सा अपने भीतर भी उस दुख का कारण खोजना चाहिए। अगर कोई दुख हमारे जीवन में आया है तो उसका कारण मेरे अपने खोटे संस्कार हैं जो मुझे आज दुख देते हैं। दुख की स्वीकृति और दुख का कारण, ये दोनों चीजें अगर हमें मालूम पड़ जाएं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं दुखी होकर के कि बहुत तकलीफ है, ये स्वीकृति है कि मुझे बहुत तकलीफ है, तब तो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डायग्नोस करके बता देता है कि कारण ये है कि आपने ऐसा ऐसा भोजन किया था और आपको इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, नहीं तो आपकी डिजीज और बढ़ती चली जाएगी, आपका रोग बढ़ता जाए। ठीक ऐसे ही हमें इस जीवन में, संसार में हमेशा अपनी अज्ञानता के कारण दुख मिला है। अज्ञानता ही मेरे दुख का कारण है, आसक्ति ही मेरे दुख का कारण है। अगर कार्ल मार्क्स से पूछेंगे तो दुख का कारण तो बताएंगे कि संसार में शोषण है, इसलिए किसी केमिकल न्यूट्रिशन वाले से पूछेंगे तो वो बताएगा कि आपके भीतर कुछ केमिकल्स गड़बड़ा गए हैं या कि विटामिन्स और प्रोटीन्स और इनमें कहीं डेफिशिएंसी है, इसलिए आपको ये दुख है। किसी और से पूछेंगे, कर्मवादी से पूछेंगा, वो कहेंगे कि आपके कर्म इसमें दोषी हैं। किसी भक्त से पूछेंगे, वो कहेंगे कि ईश्वर आपसे नाराज है, इसलिए आप दुखी हैं। आप जिससे पूछेंगे वो अलग अलग दुख के कारण, कोई बाहरी कारण बताएगा, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि दुख का कारण क्या है मेरे जीवन में, मैं स्वयं मेरे दुख के लिए मैं जिम्मेदार, कोई और जिम्मेदार नहीं, कोई और कारण नहीं है, कारण मैं स्वयं हूं। अप्पा कत्ता विकत्ता या सुहान दुखान, आत्मा अपने सुख और दुख का कर्ता और अकर्ता स्वयं है। ये डायग्नोस हमें खुद अपना करना पड़ेगा कि मेरी अज्ञानता के लिए कोई और कारण नहीं है, मेरी इग्नोरेंस के लिए मेरी जिम्मेदारी खुद है। मैं क्यों अज्ञानी हूं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, मैंने स्वीकार कर रखा है, मेरी च्वाइस है। मैं जिस दिन अपने अज्ञान को एक तरफ हटाना चाहूं उस दिन मैं अपने अज्ञान को हटा सकता हूं और ज्ञान हासिल कर सकता हूं। जिस दिन मैं चाहूं उस दिन अपने दुखों से स्वयं बचने का उपाय कर सकता हूं, अपने दुखों का इंतजाम मैं खुद कर रहा हूं। ये किसी की देन नहीं है, मेरी अपनी च्वाइस है। अगर मैं दुखी हूं तो मेरी च्वाइस है, ये बहुत कठिन है कहना मैंने दुखी चुना है, इसलिए तो मुझे दुख मिला है, मैंने वैसा किया है इसलिए मुझे मिला है, मैंने अगर वैसा नहीं किया होता तो कौन था मुझे दुख देने वाला। स्वयं कृतम कर्म यदात मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परिण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अगर कोई और मुझे दुख दे रहा होता और सुख दे रहा होता तो मेरे किए हुए कर्म तो व्यर्थ ही है फिर, नहीं मेरे किए कर्म मुझे सुख और दुख देते हैं, कारण मेरे भीतर है मेरे दुख का और सुख का भी मेरे भीतर है। अब तीसरी सच्चाई यह है कि उस दुख से बचने का कोई ना कोई उपाय भी है, अगर दुख है और दुख का कारण है तो फिर उस दुख से बचने का उपाय भी है। और इतना ही नहीं, दुख से रहित कोई अत्यंत सुख वाली स्थिति भी है जहां फिर कोई दुख नहीं है। अभी तो हमें दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख, इन दोनों का अनुभव होता है, सुख और दुख दोनों स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन एक ऐसी भी अवस्था है जहां सिर्फ सुख ही सुख है, जहां दुख नहीं है। वास्तव में वही मेरे लिए प्राप्तव्य है, वही अवस्था मेरी अपनी वास्तविक है जहां की दुख नहीं है। मैं कोशिश करूं संसार में दुखों से बचने और उस वास्तविक सुख को पाने का, ये दो और सच्चाइयां हैं। इस तरह जीवन में चार ही सत्य हैं। मेरे जीवन में दुख है क्योंकि संसार दुखमय है, दुख का कारण मेरी अज्ञानता और आसक्ति है जो मेरे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, और दुख से बचने का उपाय मुझे करना पड़ेगा, तब मुझे वो जो वास्तविक सुख की अवस्था है वो प्राप्त होगी। तो उपाय क्या है दुख से बचने का, अब इस पर थोड़ा सा विचार कर लें, क्योंकि स्वीकार अगर कर लिया है कि दुख है और कारण मेरे भीतर है तो उपाय भी तो करना पड़ेगा, अपने भीतर ही उपाय करना पड़ेगा। उपाय ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा हम दृष्टि बदल लें संसार में और थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास जागृत कर लें, ये दो ही चीज़ें हमारे लिए इन दुखों से बचा सकती। असल में अपन कहते ना कई बार कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम इस संसार को जैसा देखते हैं हमें इस संसार में वैसा ही दिखाई देने लगता है। जैसा हमारा मन होता है वैसा हम इस संसार में देख लेते हैं। हमें अपने सोच को, हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा सा बदलना चाहिए। हमारे सोच और हमारे दृष्टिकोण से हमारे जीवन में दुख आता है। हम अपने सोच को, अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हम उस दुख से बच सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, पता नहीं मैंने कौन कौन से सुना दिए, ये भूल भी जाता हूँ, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। क्या हुआ एक बार, एक पिता अपने बेटे से बहुत परेशान है। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि जरा हमारे बेटे को समझाओ, हमारी तो जिंदगी अब जाने जाने की है, एक बात नहीं मानता हमारी, क्या करें हम। बड़े मुश्किल से तो हमने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है, सोचते थे कि सुख मिलेगा लेकिन इसी से दुख मिलता है। मैं इधर की कहता हूँ जाता उधर है, मैं कहता हूँ ये कर तो करता कुछ और है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो उनके मित्र ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटे से मिलूँगा और उसको समझा दूँगा। तो जब मिले वो बेटे से, उन्होंने कहा कि बेटे अपने पिता को इतना तंग क्यों करते हो, देखो वो तुम्हें कितना चाहते हैं और तुम उनकी बात नहीं मानते, उन्हें इससे बहुत दुख होता है। तो मालूम बेटे ने क्या कहा कि मैं तो उनके अनुसार ही चलता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल में तो मैं हूँ, वे नहीं हैं। उनको उनको कोई भी चीज़ मेरी पसंद ही नहीं आती, मैं जो करूँ उसी में उनको मुश्किल है। तो कैसे, बोले कुछ नहीं अंकल, क्या हुआ कि नए कपड़े बने, तो नए कपड़े बने तो मैंने सोचा जब पिता ने मुझे नए कपड़े बनाए हैं बनवाए हैं तो मुझे पहनना चाहिए, तो मैं नए कपड़े पहन करके और दुकान पर पहुंचा। और जैसे दुकान पर पहुंचा चार लोगों के बीच में कहने लगे कि देख लो हम कमा कमा के रखते जा रहे हैं और भैया साफ ज्यादा बने घूम रहे हैं। हमने कहा बात तो सही है, हम तो नए कपड़े पहन करके और यहाँ घूम रहे हैं, सही बात है, पिता कमा कमा करके लेकिन उन्हीं ने बनवाए थे इसलिए हमने पहने। तो अब की बार चार आठ दिन के बाद में हमने सोचा कि भैया दुकान पर जाना तो अपन को ऐसे नए नए कपड़े सजा के नहीं जाना अपने को, तो हमने और जो पुराने कपड़े पड़े थे वही पहन के चले गए। तब फिर चार लोगों के बीच बोले कि ले सुनो अभी तो हम जिंदा हैं, अभी तो हम कमा रहे हैं, कम से कम लजवाओ तो मत ऐसे खराब कपड़े पहन करके। अब बताओ, अब बताइए कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे करूं तो दिक्कत है और ऐसे करूं तो दिक्कत है, उनको तो मेरे कुछ भी करने में से दुख निकालना ही निकालना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन भी ऐसे ही कर रहा हूं, हमारा सोच हमारा अपना दृष्टिकोण अगर संसार में इस तरह का है तो कभी हम अपने दुखों से नहीं बच सकते, हम हर जगह से दुख ही निकाल लेंगे संसार में। लेकिन अगर हम अपने सोच को ठीक रखें तो इस संसार में से भी हम और जो वास्तविकता है उसका आनंद ले सकते हैं। पहली चीज तो अपने सोच को, अपने दृष्टिकोण को दूसरे के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण और सोच उसको बदल लें। सोच हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, हम जहाँ जिस तरह देखते हैं उस पर निर्भर करता है। वस्तु तो कुछ और होती है, ना वो इष्ट है ना वो अनिष्ट है, लेकिन हम व्यर्थ में वस्तु में इष्ट की कल्पना करके खुद सुख और दुख पा लेते हैं। इतना सा ही इस संसार का खेल है, यही हमारी अज्ञानता। न वस्तुएं हमें सुख देती हैं लेकिन हम मान लेते हैं कि इस चीज के मिल जाने पर मुझे सुख मिल जाएगा। और जब हम ऐसा भ्रम अपने भीतर पाल लेते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती है, नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं, वो चीज़ मिल जाती है तब भी उसके बाद किसी और चीज़ की आकांक्षा जागृत होती है और फिर वही चीज़ मुझे बोझ मालूम पड़ने लगती है, जिसके पाने के लिए कल तक मैं उत्सुक था उस चीज़ के मिल जाने पर फिर वो चीज़ मुझे सुख नहीं देती, उल्टा मुझे उसमें दुख मिलने लगता है। इससे क्या मालूम पड़ता है, मेरा अपना ये जो भ्रम है, ये जो इस कनिष्ठ की मेरी कल्पना है, जो मेरा दृष्टिकोण है, की चीजों में सुख और दुख मिलता है वो मुझे अपना हटाना चाहिए, और दूसरी चीज अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना। हमारे भीतर ये आत्मविश्वास जागृत हो जाए कि हाँ, हम अपने जीवन को जब चाहें तब अच्छा बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, हम अपने दुखों से स्वयं बच सकते हैं। दुख से बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि हम अपने भीतर आत्मविश्वास जागृत। आत्मविश्वास किसे कहेंगे? अपन तो एक शब्द सब सुनते हैं, विल पावर उसको कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं आत्मविश्वास को लेकर के। लेकिन जब हम अपने भीतर टटोल के देखें कि जब हम कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं तो भीतर भीतर क्या भाव आता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कौन करता है? कई बार तो हमने सोचा कि चिट्ठी बोलेंगे, लेकिन साहस ही नहीं होता, भीतर ये विश्वास ही नहीं है कि हम बोल पाएंगे। लगता है कि बोलेंगे भी तो घाटे ही होगा, कौन यहाँ हमारे सच को सच मानने वाला है, यहाँ तो झूठ बोलने से ही काम चलेगा। हमने कई बार तो सोचा कि अब धंधे में बेईमानी नहीं करा करेंगे, कई बार तो हमारे मन में ये चीज आई, कई बार तो हमने ऐसा अपने मन में साहस किया, लेकिन फिर हमारा मन ही कच्चा पड़ जाता है, कह रहे नहीं नहीं कितने दिन कर लेंगे ईमानदारी, संसार तो बेईमानी से ही चलता है, दो चीजें मिलेंगी कैसे, खाने पीने को नहीं जुड़ेगा, बच्चे के पहनने ओढ़ने के लिए और अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत चाहिए पड़ती है,
के बड़ा नहीं कर सकते थे, हमारे लिए सुविधा मुहैया नहीं कर सकते थे, तो काय को गृहस्थी बनाई, इसलिए करो करो जिसमें सब राजी हो वो करो, मेरा कल्याण हो चाहे नहीं हो, इसमें मेरे कल्याण के लिए मैं भले ही राजी हूं, लेकिन और दूसरों के लिए मुझे सब कुछ करना पड़े तो करो, और यहां जाकर के मेरा विश्वास मेरे प्रति कम होता चला जाता है, मेरे अंतरात्मा की आवाज को जितना मैं इग्नोर करता हूं उतना ही मैं कमजोर होता चला जाता हूं, और जहां सिर्फ मैं लाभ हानि देखता हूं और लाभ हानि के अनुसार ही संसार के सारे काम करता हूं, वहां पर कौन होगा जो अपने विल पावर को, अपने आत्मविश्वास को, कौन होगा जो कि कोई अपने जीवन का सिद्धांत बना के चलेगा कि मेरे जीवन का तो सिद्धांत ये है कि मैं इतने प्रतिशत ही बेनिफिट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, या कि मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, या कि मैं इस तरह से रहूंगा इस तरह से नहीं रहूंगा, जीवन में ऐसा जीऊंगा, ऐसा ऐसा जब तक हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा तब तक कैसे हम अपने जीवन को रेगुलेट कर पाएंगे अपने अनुसार। अभी तो हमारा जीवन पूरा का पूरा जैसा वातावरण है उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं, हमारे अपने जीवन का कोई सिद्धांत ही नहीं रह जाता, हम तो ये कहते पाए जाते हैं कि सब चलता है ना, चाहे रात में खाने की बात हो और चाहे भक्ष अभक्ष की बात हो, चाहे और भी सामाजिक क्रियाएं हो जो हमारा कुल का आचरण है उसको भी बालाए ताक रख करके हम एक ही शब्द बोलते हैं, सब चलता है। सब चलता है इसका मतलब है कि बहुत अविश्वासी व्यक्ति है जिसको अपने भीतर भी विश्वास नहीं, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, जो अपने जीवन में कोई अनुशासन ही नहीं कर पा रहा है, जो इतनी लापरवाही से जी रहा है कि सब चलता है। ये अपनी कमजोरी है, फिर हम कभी भी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे अगर हम सेल्फ डिटरमिन्ड नहीं है, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास नहीं है, हमारे भीतर आत्मानुशासन की कोई प्रक्रिया नहीं है, हम अपने ऊपर खुद अंकुश नहीं रख सकते हैं अगर, तो मानिएगा फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा आत्मविश्वास अपने भीतर जागृत करना चाहिए कि हम जैसा अपना जीवन बनाना चाहेंगे वैसा हम बना सकते हैं। एक छोटी सी घटना मैं हमेशा सुनाता हूं, मुझे अच्छी लगती है वो आत्मविश्वास की घटना, पता नहीं मैंने आपको सुनाई है कि नहीं सुनाई, ऐसा कह के ही सुना रहा हूं, नहीं सुनाई होगी तब भी सुनाऊंगा, सुनाई होगी तब भी सुनाऊंगा। आप अगर बीच में टोक देंगे तो बदल भी सकता हूँ, क्योंकि दूसरी भी आ गई मेरे पास, दो हो गई अब मेरे पास चॉइस है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। फिर भी शुरू करते हैं, शायद आपको याद आ जाए, हे भगवान याद ना आए ऐसा ऐसा ही करते हैं अपन संसार में, है ना। जब अपन को कहीं कुछ सच बोलना होता है, कहीं कुछ अच्छा करना होता है, तब भी अपन ऐसे ही करते हैं, जो अच्छा है उसको भूल जाते हैं, भगवान वो याद ना आए, जो बुरा है वही हम पर हावी रहता है, वही हमें हमेशा याद में बना रहता है। दूसरे के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा करना है, ये कहाँ याद रहता है, उसको तो हम भूले ही रहते हैं, और भावना पाते हैं कि उसको हम भूले ही रहे हैं, और भूलने के इंतजाम भी हमने कर रखे हैं। कभी कभी थोड़ा सा भगवान के सामने पहुंचने पर याद आता है, या कि जो अच्छा जीवन बना रहे उनके सामने पहुंचने पर थोड़ा याद आता है कि अपने को भी ऐसे ही बनाना चाहिए, लेकिन फौरन हम अपने उसको बदल लेते हैं कि अरे एकाध कोई होता है ऐसा, ऐसे सब थोड़ी होते हैं, सब तो संसार में ऐसे ही चलता है, ऐसा कर लेते हैं। यही तो हमारी अपनी सबकी कमजोरी है। खैर अपन बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी कमजोरियों पर विचार करेंगे तो हो सकता है कि मन बने अपने आप की कमजोरियों को दूर करने का और अपने अपने आत्मबल को जागृत करने का। जिस दिन हमारा आत्मबल जागृत हो जाएगा, जिस दिन हमारा आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, उस दिन हम कुछ कर पाएंगे, हमें ये आशा है। इसी आशा से तो हम रोज लोग बैठते हैं कि हमारे अंदर जो अनंत शक्ति आत्मा में है वो हमारे ही अपने संस्कारों की वजह से ढक गई है। पता नहीं कौन सा ऐसा क्षण होगा जब हम अपने कर्मों को एक तरफ हटा करके अपने उस आत्मबल को प्रकट करके और अपने जीवन का कल्याण करने की उसी क्षण तय कर लेंगे और शुरुआत कर बैठेंगे। किसका कौन सा क्षण शुरुआत का होगा ये कहा नहीं जा सकता। एक राजा पर विपत्ति आई और पड़ोसी देश ने उस पर आक्रमण कर दिया। पड़ोसी देश की शक्ति बहुत थी, राजा के देश में उतने सैनिक भी नहीं थे और वे सैनिक उतने अधिक निष्णात भी नहीं थे, ना उनके पास लड़ाई लड़ने के उतने साधन थे। तब सबसे पहले सेनापति ने आकर के राजा से कहा कि मैं तो अपना सेनापति पद छोड़ता हूं, ये लड़ाई मेरे से नहीं लड़ी गई। क्यों? मुट्ठी भर सैनिक और मुट्ठी भर हमारे पास हथियार, वहां पर हजारों की संख्या में सैनिक और हजारों उनके पास हथियार, कहां से? हम तो हारेंगे, हारेंगे क्या, मर जाएंगे। और ऐसी हार और ऐसा मरना हमें स्वीकार नहीं है, हमने सेनापति पद छोड़ा। जब सेनापति ने अपना पद छोड़ दिया, सेनापति ही नहीं रहा, तो सेनाएं भी विमुख हो गई, वे भी पीछे हट गई कि हम नहीं जा सकते। राजा बहुत मुश्किल में, राजा की सारी शक्ति तो वही थी, अब क्या करे राजा, ऐसी विपत्ति में कौन सहारा देगा? कोई हमारे आत्मविश्वास को जागृत करने वाला ऐसे समय पर होना चाहिए, या तो हम अपने आप ही अपने आत्मविश्वास को जागृत कर सकें, या फिर हमारे जीवन में एक ऐसी जगह हो जहां पहुंच करके बैठ करके हम अपने उस आत्मबल को, अपनी उस आत्मशक्ति को जागृत कर दे। और उसे याद आता है ऐसे मौके पर उसके बचपन का एक मित्र, जो हमेशा उसे कभी भी कोई मुश्किल आती थी तो खेल खेल में उसकी मुश्किल को आसान कर देता था, उसे ये वो मित्र याद आया। और उसने पता किया सैनिकों से कि वो मित्र तो साधु हो गया और वो तो किसी जंगल में मिलेगा, खोजो खोजो उसे, मुझे आज उस मित्र की बहुत जरूरत है। और सैनिक ने खोज करके बताया कि वो उस जंगल में झोपड़ी में रहता है, आपका मित्र अब तो बहुत वृद्ध हो गया है, बाबा बन गया है। राजा ने कहा कोई भी हो वो मुझे पहचान जाएगा। राजा पहुंचता है उसके पास, वो स्वागत करता है कि आओ मित्र। अभी भी बाबा बन जाने के बाद भी मजा तो यही है, जब हम अपने आप को ही भूल जाते हैं तो फिर औरों को भूल जाएं, ये तो संभव ही है। वे लोग जो अपने आप को नहीं भूलते, वे दूसरे के किए गए उपकार को भी नहीं भूलते। राजा से कहा उसने कि क्या चाहते हो, राजा ने कहा कि बहुत विपत्ति में हूं, तुम्हारी मदद चाहता हूं, क्या मदद कर सकता हूं। राजा ने कहा कि पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया है, सेनाएं पीछे हट गई हैं, सेनापति ने हथियार डाल दिए हैं, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, मेरी हार क्या, मेरी मृत्यु भी संभव है, मैं बंदी बना लिया जाऊंगा। तो थोड़ा मजाकिया तो था ही वो बचपन का मित्र, भले ही वो साधु हो गया था, उसने हंसते हंसते कहा तो ठीक है मैं तुम्हारा सेनापति बन जाता हूं और मैं चले जाता हूं लड़ाई पर। राजा को बड़ा ऐसे मौके पर तो लगता ही है कि जब बहुत सीरियस केस है और वहां पर आप इतना मजाक में बात कर रहे हैं, तो राजा ने कहा कि देख अब वो बचपन के दिन लग गए, अब इतने इतने गंभीर मामले में तू मजाक मत कर। उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मेरे हाथ में तलवार दे दो और मुझे स्वीकार है तुम्हारा सेनापति बनना, तुम्हें अगर स्वीकार हो तो मैं तैयार हूं। अब राजा क्या कहे, इतने विश्वास के साथ, इतने विश्वास के साथ वो कह रहा है। अपन भी इतनी विश्वास से भर करके बैठे हुए हैं कि कुछ भी नहीं होगा, है ना? नहीं तो एक क्षण में कैसा लगता है, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि आंधी आती है और बहुत तेज तेज आंधी आती है, ऐसा लगता है कि सारे संसार को उड़ा के ले जाएगी, लेकिन जब थम जाती है तो मालूम पड़ता है कि कचरा कूड़ा उड़ करके इधर उधर हुआ है, बाकी सब ज्यों का त्यों। हाँ ऐसा उन्होंने लिखा। अपने जीवन में भी ऐसे ही कर्मों की आंधी आती है, लगता कि गया अब तो सब खत्म, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिटता, उसके बाद जो कचरा कूड़ा है वो हट जाता है, जो कर्म असुभाए थे वे अपना फल देकर के यहां वहां चले जाते हैं और जीवन फिर चलता रहता। लेकिन ऐसा आत्मविश्वास हो तब ना। अब जब वो सेनापति बनने तैयार है तो राजा ने कहा कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ। उसने कहा मिलाओ मुझे अपनी सेनाओं से। सेनाओं के सामने जाकर उसने कहा कि जानते हो मैं कौन हूं, मैं राजा का नया सेनापति हूं और मुझे ये मालूम है कि जब जब मैं सेनापति बनता हूं तो जीत मेरी होती है, बोलो कौन मेरे साथ लड़ने तैयार है। वैसे तो मुझे तुम सबकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही उस राजा से लड़ने के लिए तैयार हूं, पर यदि तुम भी उस जीत का मजा लेना चाहते हो तो आ सकते हो मेरे साथ। अब तो सब ऐसे इतना जबरदस्त सेनापति जो कह रहा है कि वैसे तो मैं एक अकेला ही उस राजा से लड़के और जीत करके वापस आ सकता हूं, लेकिन तुम सब सैनिकों को भी उस जीत का मजा देना चाहता हूं, आ सकते हो मेरे साथ। सारे सैनिक तैयार। उन्होंने कहा चलो। जबकि एक सैनिक के पीछे वहां पर 50-50 सैनिक हैं लड़ने के लिए, इतनी कम संख्या में सैनिक हैं, लेकिन सेनापति का आत्मविश्वास, वो कहता है चलो, और चल पड़ते हैं। थोड़े से सैनिक उसके पीछे थे ही उतने, और रास्ते से ऐसे रास्ते से लेके जाता है वो जहां एक खंडहर बीच में पड़ता है, और जैसे ही वो खंडहर दिखाई पड़ता है सेनापति बना हुआ वो बाबा कहता है कि अरे भगवान अचानक रास्ते मिल गए, चलो बहुत अच्छा हुआ, भगवान से पूछ लेते हैं कि हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अगर भगवान कह देंगे कि जीतेंगे तो आगे चलेंगे, और अगर भगवान ही कह देंगे कि हार जाओगे तो काय को बेकार में जाएंगे, कन्फर्म हो जाएगा। सैनिक तो और ज्यादा विश्वास में आ गए कि अरे वाह बढ़िया सेनापति मिला, भगवान से पूछ के भी जा रहा है, वैसे तो इसका खुद का विश्वास इतना है पर फिर भी भगवान का आशीर्वाद लेके जा रहा है, चलो चलते हैं। गए वहां पर पहुंचे, देवता की मूर्ति सामने रखी हुई है, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है वो सेनापति कि भगवान सच्ची सच्ची बता दो, हम जा रहे हैं लड़ने, अगर जीत जाएंगे तो आप आशीर्वाद दो जीतने का, अगर हार नहीं है तो कह दो हार जाओगे तो हम यहीं से लौट जाएं, काय को इनको मरवाएं हम खुद मरें। सीधा सीधा ऐसे ऐसे अपन नहीं कहते भगवान से, भगवान से तो अपन वो बिनती है अपनी फिक्स वही कहते हैं, हाँ वो जो बनी हुई है बिल्कुल ट्रेडिशनल परंपरागत। अपने दिल की बात अपन भगवान से बहुत कम छिपा लेते हैं, भगवान से अपने दिल की बात मालूम ना पड़ जाए उनको कि क्या क्या चल रहा है मेरे भीतर। अब उसने तो जो था वैसा था कह दिया, लेकिन भगवान तो चुप, जो बोले वो क्या भगवान, जो चुप है वही तो है भगवान। और सचमुच भगवान चुपचाप हैं, फिर भी बोल रहे हैं। उस बाबा के भीतर से वो सैनिकों की तरफ मुंह करके कहता है कि भगवान का सोचना ये है कि तुम मेरे सामने सिक्का उछाल लो, अगर हेड तो जीत तय, चले जाओ निष्फिक्र होके, और अगर टेल तो हार निश्चित, मरने मत जाओ, लौटो वापस। अरे ऐसा कह रहे हैं भगवान? हाँ ऐसा कह रहे हैं। निकालो फिर सिक्का। निकाला बाबा जी ने सिक्का और फेंका। फेंका तो हेड दबाया हाथ में और कहा कि जीत निश्चित है, आ जाओ मेरे साथ। क्यों, भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान की साक्षी में हेड गिरा हुआ और जीत तय है। और सचमुच जाते हैं और वे 50-100 सैनिक हजारों सैनिकों पर भारी भर जाते हैं और जीत करके लौटते हैं। बाबा जी कहते हैं कि चलो उसी रास्ते से चलते हैं जिस रास्ते से आए थे, एक बार भगवान को थैंक्स तो दें कम से कम कि आपके आशीर्वाद से ही हम जीत करके लौटे हैं। और कहते हैं कि उसी खंडर में वो बाबा जो सेनापति बना था सैनिकों को ले जाता है और कहता है कि बाबा की कृपा, भगवान की कृपा से तुम तब जीते हो, अभी तक तो तुम यही जानते थे, पर मैं जानता हूँ किसी भगवान भगवान की कृपा से तुम नहीं जीते, तुम अपने आत्मविश्वास से जीते हो। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो ये देखना चाहो तो देख लो सिक्का। जब सबने सिक्का हाथ में लेके देखा तो दोनों तरफ हेड ही हेड था, टेल तो वहां था ही नहीं, किसी भी तरफ से गिरे जीत तो मेरी होगी। देख इतना आत्मविश्वास, कहीं कोई कच्चापन नहीं है, लेकिन हमारे भीतर तो जरा में प्रबलता आती है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, ले लूं नियम ले लूं, लेकिन भीतर का दूसरा मन आकर के फौरन कहता है कि अरे अरे निभा नहीं पाओगे, निभा नहीं पाओगे, ठहरो थोड़ा। और फिर हम जल्दी से पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं अपने जीवन को बस आज इसी क्षण अच्छा बना लेंगे, लेकिन भीतर का कच्चापन फिर हमें पीछे ढकेल देता है और हम इसी जद्दोजहद में एक कदम आगे और फिर पीछे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, पूरा जीवन इसी उलझन में व्यतीत हो जाता है। एक बार तय तो कर दें कि मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, दुख है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में दुखों का कारण भी मेरी अपनी अज्ञानता है, मेरी अपनी आशक्ति है, मैं चाहूँ तो अपने दृष्टिकोण को बदल करके, मैं चाहूँ तो अपने आत्मविश्वास को जागृत करके अपने जीवन के दुखों से निजात पा सकता हूँ, अपने जीवन को उस परम सुख तक ले जा सकता हूँ। इसी भावना के साथ कि हम सबके भीतर एक ऐसी अच्छी समझ डेवलप हो, हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने आत्मविश्वास को जागृत करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की इस प्रक्रिया में कुछ कदम आगे रख सकें, इसी भावना के साथ आज अपन फिर एक साथ मिल बैठ करके और नमोकार करते हैं कि हमारा मन निर्मल हो और हमारा जीवन निर्मल हो, इसी भावना के साथ।
Oh.
नमो लोए सौ सागुणम चत्तारि मंगलम मंगलम सामु मंगलम केवली बन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि सागर मुनि महाराज हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ अब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों I
पंथे गुरुवर प्रणाम विद्या कमलाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा पर पास देखो मानुषी बतानी है जावानी के ज्ञान पे सूर्य लुकानो सुवानी मस्तक नमो